शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निराणुशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वराहपीडं नटवरवपुः करुणयोः कर्णिका विव्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद्गीतकीरुति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रे तन्मयुतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधारमण राधारमण हरि भो
जय जय राधा।
गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, क्षमादरणीय श्री झुंझुनवाला जी, आदरणीय डालमिया जी, जाजू जी, खेतान जी, सम उपस्थित भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान रास बिहारी की जो अत्यंत दिव्य लीला है, जिसके वर्णन श्रवण और मनन में रस आता है, जिन लोगों ने उस लीला का दर्शन किया होगा और जो उसमें शामिल होंगे उनके रस की तो पराकाष्ठा थी। ये वो दिव्याति दिव्य लीला है। गोपियां भगवान के अंतर्धान के पश्चात भगवान का अन्वेषण करती हुई, खोजती हुई, अनेक तरह से प्रयास करती हैं भगवान के प्राकट्य का, लीला का अनुकरण किया, उससे भी भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। भगवान का दर्शन कैसे होता है, कैसे मिलते हैं, इस क्रम का भी साथ साथ में वर्णन है। गोपियों ने आगे देखा, ठाकुर जी रास बिहारी किशोरी जी को लेकर के अंतर्धान हुए और उनके स्वाभाविक हृदय से निकल गया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो या मनयद रहा। वास्तव में अगर किसी गोपी की आराधना सफल है तो किसकी सफल है? बोले, जिस गोपी को भगवान कृष्ण अपने साथ लेके गए। श्रीमद् भागवत में श्री किशोरी जी का नाम स्पष्टतया वर्णन नहीं है और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महापुरुष कहते हैं सुखदेव जी महाराज किशोरी जी के गोलोक में पालित शुक हैं। शुक भागवत कथाओं में आप देखते होंगे, सुखदेव जी के प्रतीक में तोता लगाया जाता है, पैरेट। तो प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी तो अद्भुत महापुरुष थे, तोता क्यों लगाते? वही प्रतीक है। किशोरी जी और ठाकुर जी जब गोलोक में रहते हैं तो किशोरी जी एक तोता पाल के रखती है। उनके अवतार का समय जब हुआ तो तोते ने कहा कि मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगा, मैं भी चलूंगा। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, आप भी चलिए और भूलोक में आप हमारी कथा का गान करना। तो वो गोलोक के जो किशोरी जी के पालित शुक थे वो महर्षि व्यास के पुत्र के रूप में सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए सुखदेव जी के हृदय में तो श्री राधा नाम हमेशा रहता है। भागवत में अनेक स्थान पर आया है कि वो समाधिस्थ हो जाते, लेकिन इतना प्रेम है, इतना प्रेम है किशोरी जी के प्रति कि हृदय में नाम आते ही वाणी अवरुद्ध हो जाती है और वो हृदय का शब्द वाणी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए श्री राधा नाम का उच्चारण भागवत में हो ही नहीं सका, प्रकारांतर से उसका वर्णन है, नामोल्लेख नहीं है। ये भाव प्रधान समाधान, बड़ा सुंदर समाधान है महाराज। तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, इसी गोपी ने वास्तव में, तो ये कौन सी गोपी है? यही राधा रानी, यही किशोरी जी। गोपियां कहती हैं वास्तव में आराधना तो इन्हीं की सफल है। गोपियों को शायद ये मालूम नहीं है कि आराधना की आवश्यकता नहीं है, ये तो शक्ति और शक्तिमान है, ये लीला के लिए दो हुए हैं, वास्तव में एक है। वृंदावन की आराधना में बहुत प्रसिद्ध है वो भाव, दो देह एक प्राण। दो देह एक प्राण कैसे होगा जब तक कि दोनों एक नहीं होंगे? लीला के लिए दो बने हुए। गोपियां प्रसन्न होती हैं और आगे बढ़ती हैं भगवान को खोजने के लिए। आगे से प्रसंग बदलता है। भागवत में वर्णन है कि किशोरी जी को थोड़ा गर्व हो गया, गर्व प्राउड, क्या गर्व हो गया कि भगवान ने सब गोपियों को तो छोड़ दिया और केवल मेरे साथ लीला कर रहे, अंतर्धान होकर के मेरे को ही केवल लेके आए। अब गर्व हो गया ये तो लिखा है भागवत में, लेकिन जो वास्तव में उपासक हैं, आराधक हैं, किशोरी जी के प्रेमी हैं, उनके ये बात गले उतरती नहीं, समझ में आती नहीं। कि किशोरी जी को मान हो जाए वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति गर्व हो जाए अपने सौभाग्य का, अपने सौंदर्य का, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए लिखा है कि ये जो ग्रंथ हैं, भागवत है, भगवद गीता है, या जितने भी अपने ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, ये स्वतंत्र पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। जब तक किसी सुलझे हुए महापुरुष को गुरु बनाकर के उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो ये शास्त्र को जंगल कहा गया है, जंगल। जंगल से निकालने वाला कोई पथ दर्शक न हुए तो व्यक्ति भटक जाएगा। तो गर्व, गर्व हो गया ये लिखा है भागवत में। मैंने अनेक टीकाएं देखी कि गर्व हो गया, इसकी संगति क्या है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि शायद किसी टीका में इसका समाधान नहीं मिला। एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज किशोरी जी को गर्व हो गया ये बात समझ में नहीं आती। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा किशोरी जी को गर्व नहीं हुआ, किशोरी जी ने गर्व की लीला की, अभिनय किया गर्व का। मैंने कहा क्यों, गर्व का अभिनय करने की भी क्या आवश्यकता पड़ी? बोले किशोरी जी जानती थी कि गोपियों को गर्व हुआ है जिससे श्री कृष्ण का वियोग हुआ है, और गोपियों के गर्व तोड़ना है, क्योंकि बिना किशोरी जी की कृपा के कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। किशोरी जी की कृपा से कृष्ण प्राप्ति होती है, गोपियों को पुनः कृष्ण प्राप्ति कराना है किशोरी जी को। तो यहाँ पर किशोरी जी आचार्य के रूप में भी स्वीकृत हैं अपने कृष्ण उपासना में, किशोरी जी माँ के रूप में भी स्वीकृत है, जैसे माँ अपने बच्चे को पिता के पास पहुँचाती है, एक गुरु अपने शिष्य को ईश्वर से मिलाता है, अनेक रूपों में किशोरी जी का स्वीकार है उपासना में, ब्रज की उपासना में। तो किशोरी जी को गोपियों के गर्व को तोड़ना है जिससे कृष्ण प्राप्ति पुनः हो और महारास हो। तो किशोरी जी ने गर्व की लीला की, और किशोरी जी जानते थे कि मैं जब गर्व की लीला करूंगी तो ठाकुर जी मेरे को छोड़ के जाएंगे, स्वाभाविक है। और जब ठाकुर जी छोड़ के जाएंगे और गोपियां जब मेरे को देखेंगी कि जिन श्री कृष्ण ने थोड़ा सौभाग्य के गर्व में किशोरी जी को छोड़ दिया, उन श्री कृष्ण को क्या हम अपनी साधना से पा सकती हैं, क्या अपने सौभाग्य से पा सकती हैं? किशोरी जी के गर्व की लीला से गोपियों का गर्व अपने आप निवृत्त हो जाएगा, इसलिए किशोरी जी ने गर्व की लीला की, गर्व का अभिनय किया। वास्तव में किशोरी जी को गर्व होना असंभव। अब वो जो गर्व की लीला भी इतनी, महाराज साक्षात किशोरी जी हैं। आज का अभिनेता जब कोई लीला करता है तो व्यक्ति तन्मय हो जाता है अपने, वो क्या है अपने शेखर सुमन, क्या नाम है, शेखर सेन, हाँ शेखर सुमन, नाम कन्फ्यूज हो जाता। तो वो महाराज जब वो रोल करते हैं तुलसी का, कबीर का, और अपने विवेकानंद जी का, मैंने देखा है स्वामी विवेकानंद जी का और कबीर का दो रोल देखे मैंने। आज का व्यक्ति जब अभिनय करता है तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, और जब साक्षात किशोरी जी करें तो अभिनय वो क्या, जिससे कि व्यक्ति अभिनय को अभिनय समझ ले। अभिनय को जब तक व्यक्ति सत्य न समझ ले तब तक अभिनय की सफलता ही कहाँ है। किशोरी जी ने ऐसा अभिनय किया गर्व का, और भगवान कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण बहुत देर हो गई हम लोगों को चलते हुए, और अगर कहीं आपको चलना है तो अब मेरे में चलने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे ले चलने की कोई व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण भी समझ गए, लीला का प्रारंभ हो गया, भगवान कृष्ण भी तो लीला में सहयोग देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, किशोरी जी यहाँ कोई साधन की व्यवस्था तो है नहीं, अगर आपको चलने की सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपको अपने कंधे में बैठा लेता हूँ, और तो कोई उपाय है नहीं। और तो कोई गाड़ी व्यवस्था है नहीं। यहाँ किशोरी जी ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण जैसे उस जमुना पुलिन पर बालुका में नीचे बैठे कि हमारे कंधे पे बैठ जाएं, किशोरी जी जैसे बैठने के लिए तैयार हुई, श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। जैसे श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, हाँ बस किशोरी जी तो कहना क्या है, जहाँ एक ही चैतन्य है, एक ही शक्ति है, वो अलग रह कैसे सकते। उनके श्री मुख से महाराज, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशि क्वाशि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण सर्वस्व। एक एक शब्द उनके श्री मुख से जो निकला, जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये किशोरी जी के विलक्षणता, पूर्ण शब्द उसी को माना गया है जो अपने अर्थ को प्रकट कर दे, शब्द निकले और अर्थ प्रकट हो जाए। जैसे आप यहाँ किसी का नाम पुकारें और वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, इसी को पूर्णता माना जाएगा। तो भगवान के नाम में पूर्ण हमारी तत्परता है कि नहीं, ये कैसे पता लगे। हमारे मुख से श्री राम नाम निकले और श्री राम की अनुभूति होने लग जाए, श्री कृष्ण नाम निकले और श्री कृष्ण की अनुभूति होने लग जाए, इसको पूर्णता कहा गया। किशोरी जी के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किशोरी जी ने हा नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए। ये जो वृंदावन के विग्रह है ना, ठाकुर है ये किशोरी जी। हा नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण कहा तो श्री राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ कहा, प्रेष्ठ माने प्रियतम, प्रेष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ प्रकट हो गए, और महाभोज कहा तो बांके बिहारी प्रकट हो गया। एक एक शब्द ने ठाकुर के एक एक, हाँ किशोरी जी नाम पुकारें और ठाकुर जी प्रकट न हो, ये कैसे हो सकता है, यह असंभव है। एक भक्त भगवान का नाम पुकारता है और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, किशोरी जी नाम पुकारें और ठाकुर प्रकट न हो, ये असंभव बात है। चारों विग्रह प्रकट हो गए लेकिन किशोरी जी तो मूर्छित अवस्था में चली जाती। उधर से गोपियां आती खोजती हुई, क्योंकि वो तो चरण चिन्ह के सहारे खोजती हुई आगे बढ़ रही। जब गोपियां वहां पहुंच जाती हैं और किशोरी जी को इस दशा में देखा, किशोरी जी बेहोश पड़ी, उनको पंखा झला, जल छिड़का, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन सुनाया, यही अमृत है भक्त के लिए, और किसी से वो जल्दी शांत नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में मैंने पढ़ा था, बचपन में जब वो रोने लग जाते थे तो वो किसी खिलौने से शांत नहीं होते थे। जब उनके सामने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन होता था तो शांत हो जाते थे, वो चुप हो जाते बचपन से। तो भक्त के लिए और क्या चाहिए। गोपियों ने भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन प्रारंभ किया और किशोरी जी वाही अवस्था में आई। गोपियों ने पूछा क्या हुआ, किशोरी जी ने बताया मेरे को थोड़ा गर्व हो गया, मैंने ऐसा ऐसा श्री कृष्ण से कहा और श्री कृष्ण मेरे को छोड़ के चले गए। गोपियों की आंखें खुल गई, आश्चर्य हुआ। हमको लगता था श्री कृष्ण हमारे सौभाग्य और सौंदर्य के कारण हमको स्वीकार किए हैं, जो श्री कृष्ण थोड़े से गर्भ के कारण श्री किशोरी जी को छोड़ के जा सकते हैं, वो श्री कृष्ण हमको क्या हमारे सौभाग्य से स्वीकार करेंगे या अपनी करुणा से स्वीकार करेंगे। बस गर्भ उनका समाप्त, किशोरी जी का उद्देश्य वही था। गोपियों का गर्भ दूर हो तभी कृष्ण प्राप्ति होगी। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन की आज भी उपासना में जो संत है ना, और जो वृंदावन में रहते, मैं भी रहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जब तक किशोरी जी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण लीला का रहस्य आपके समझ में नहीं आ सकता है। आज भी वही परंपरा है, हाँ। इसलिए श्री धाम में रहो, हाँ, किशोरी जी का आश्रय लेके उनका स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, किसी के निंदा स्तुति मत करो, राग द्वेष मत करो। कोई अगर गलत व्यक्ति भी दिखाई देता है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी रहते थे गोवर्धन जी में, बड़ी अच्छी बात कहते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा, महाराज ब्रज में भी आजकल थोड़ा उपद्रवी लोग हैं, उनके प्रति क्या भाव रखे हम लोग? वो बोले, जब श्री कृष्ण थे तब कंस ब्रज में था कि नहीं, तब अघासुर बकासुर था कि नहीं, पूतना थी कि नहीं? अरे सोच लो, उन्हीं का थोड़ा बहुत अंश बच गया होगा, वो भी कृष्ण लीला का एक अंग है। तुम अपना मन भाव क्यों खराब करते हो? तुम्हारा काम तो श्री कृष्ण करेंगे। तुमको श्री कृष्ण ने ठेका नहीं दिया उनको सुधारने का, तुमको श्री कृष्ण ने कहा नहीं कि उनके तरफ दृष्टि लगाओ या उनका काम ठीक करो, तुम अपना भजन करो महाराज। तो आज भी किशोरी जी की कृपा के बिना ब्रज में निवास, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। आज वही किशोरी जी गोपियों पर फिर कृपा करती, उनके गर्व को दूर किया। और इतना ही नहीं, जैसे एक गुरु अपने साधक शिष्य को लेकर के ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर से मिलाता है, जो गुरु का मुख्य रोल है, गुरु अपने को छिपा लेता है ईश्वर की अनुभूति के बाद, गुरु अपने को छिपा लेता है, जीव को ईश्वर की अनुभूति करा देता है, वही रोल यहाँ किशोरी जी का है। इसलिए किशोरी जी को आचार्य के रूप में भी स्वीकार किया गया, माँ के रूप में भी स्वीकार किया गया, अनेक रूपों में किशोरी जी को स्वीकार किया गया। महाराज किशोरी जी सभी गोपियों को लेकर के श्री कृष्ण की खोज में पुनः जमुना पुलिन पर आगे चल पड़ती, और कैसे चलते हैं? चरण चिन्हों के सहारे, भगवान के जो चरण चिन्ह बने हुए उन्हीं के सहारे सहारे आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते हुए आगे जब देखा कि इतना घनघोर जंगल आ गया, पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्णिमा का चांद है, उसकी चांदनी भी इतने घनघोर जंगल है कि प्रकाश प्रवेश नहीं कर पा रहा है, अंधेरा होने लग गया रास्ते में, इतना घनघोर जंगल था। और रास्ते में कांटे भी थे, कांटे, वृंदावन में कटीली झाड़ियां थी, वो गोपियों के पैरों में जब लगने लगे तो देखो प्रेम का स्वरूप, गोपियों के पैरों में वो कांटे लगने लग गए तो गोपियों के मन में क्या आया? जो कांटे हमारे पैरों में बाद में लग रहे हैं, ये कांटे हमारे श्री कृष्ण के पैरों में पहले लगे होंगे, क्योंकि वो हमसे आगे गए और हमारे कारण वो छिप रहे, हमारे दुर्व्यवहार के कारण, हमारे गर्व के कारण उनको लीला करनी पड़ रही है। गोपियां अपने कष्ट से दुखी नहीं है, श्री कृष्ण के कष्ट से दुखी होती, इसका नाम प्रेम है। गोपियों का जो प्रेम है, आप ठीक से पढ़ें तो पता लगेगा प्रेम कहते किसको है। आजकल जिसको प्रेम प्रेम कहते ना, वो तो प्रेम शब्द को मैं समझता हूँ दूषित करते, प्रेम का अर्थ नहीं जानते हो, ये स्वार्थ है। आजकल जिसको आप प्रेम कहते हैं वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, जरा उसके मन के खिलाफ थोड़ा करके देखो, फिर पता लगेगा कि वो प्रेम तुमसे करता है या तुमसे कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक उसके लिए सब ठीक है तब तक प्रेम, प्रेम में त्याग नहीं, प्रेम में अपना त्याग है, अपना सर्वस्व का त्याग है, प्रियतम का त्याग नहीं है, ये प्रेम का लक्षण। महाराज तो गोपियां, उनको कष्ट ये नहीं होता कि हमारे पैरों में कांटे लग रहे हैं, हमारे आराध्य के चरणों में कांटे लग रहे होंगे, इसलिए अब हमको आगे नहीं चलना है, क्योंकि हम जितना आगे जाएंगी श्री कृष्ण छिपने के लिए उतना ही आगे जाएंगे। लौट आई, जमुना पुलन पर लौट आई और निश्चय क्या हुआ, मिलना होगा तो यहीं मिल जाएंगे और नहीं मिलना होगा तो सारे वृंदावन में खोजने के बाद भी नहीं मिलेंगे। निश्चय क्या हुआ, भगवान साधना से नहीं मिलेंगे, कृपा से ही मिलेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना। आजकल बुद्धिजीवी बहुत हैं। हमारे गुरु जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान कृपा से ही मिलते हैं तो फिर साधना हम क्यों करें, हम अपना काम करें। बोले हाँ बेटा तुम दुकान करो, भगवान को जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुमसे आके मिल लेंगे। अरे साधना नहीं करोगे तब तक भगवान कृपा से मिलते हैं इस बात का पता भी नहीं लगेगा। कृपा का अवतरण साधना के पात्र पर होता है। साधना से हृदय शुद्धि होगी तब कृष्ण की अनुभूति होगी। साधना से क्यों नहीं मिलते हैं, कृपा से क्यों मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य। अच्छा ठीक है, साधना में क्या करते हैं, जप करते, पूजा करते, भगवान का श्रृंगार करते, भोग लगाते। एक भक्त कहता है प्रभु आपको मैं क्या दूंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्या आपको मैं 56 भोग लगाऊं तो प्रसन्न होंगे या बहुत सारी ज्वेलरी पहनाऊं तो प्रसन्न होंगे। भक्त कहता है ये तो मेरी बात समझ में नहीं आती, क्यों? बोले अन्नपूर्णा जिनकी कृपा कटाक्ष के प्रतीक्षा करते हैं कि ठाकुर जी आदेश करें और मैं उसके यहाँ काम करूं। अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी जिनकी आदेश की प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु का आदेश हो तो उसके भक्त की सेवा करूं। और इस श्लोक हमारे गुरु जी बहुत बोलते थे। एक भक्त कहता है रत्ना करस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देव भवते जगदीश्वराय। प्रभु आपका निवास स्थान तो उस क्षीर सागर में है जहाँ रत्नों का ढेर है, आपकी चरण सेविका हैं लक्ष्मी जी, आपके इशारों पे काम करती हैं अन्नपूर्णा, मेरे को समझ ही नहीं रहा कि मैं आपको क्या दूं। अरे अन्नपूर्णा जिसके इशारे पे काम करती आप 56 भोग लगा के क्या उसको खुश करोगे, लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा करते हैं क्या थोड़ी ज्वेलरी पहना के आप उसको खुश करोगे। लेकिन वह भक्त बड़ा प्रेमी था। भक्त कहता है कि एक वस्तु ऐसी है जो आपके पास नहीं है और वो मेरे पास है, तो जो वस्तु जिसके पास नहीं है वो दी जाए तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, जिसके पास बहुत सारा सामान है उसमें से थोड़ा आप और दे दो तो उसके लिए कोई बड़ी कीमत नहीं। भगवान भी मुस्कराए, बोले भक्तराज ऐसी कौन सी वस्तु है जो तेरे पास और मेरे पास नहीं है। भक्त कहता है राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम। ठाकुर तुम्हारा मन राधा रानी चुरा के ले गई, तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपना मन मैं तुमको दे देता हूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा मेरा काम हो जाएगा। तो ये मन 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 देना है। तो भगवान साधना से नहीं मिलते, कृपा से मिलते, कैसे सिद्ध हुआ? जब आप साधना करेंगे तो भगवान को लगेगा कि ये मन अपना दे रहा है, ये साधना उसकी प्रस्तुति है, सेवा की अभिव्यक्ति है, साधना की अभिव्यक्ति। आप जप करते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये आपके प्रेम की अभिव्यक्ति। भगवान को ये चाहिए ऐसा नहीं है कि आप भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे क्या, क्या आप श्रृंगार नहीं पहनाएंगे तो भगवान के पास क्या कपड़े नहीं है क्या, अभिव्यक्ति। तो आप जब करेंगे भगवान को लगेगा ये वास्तव में मेरे को चाहता है, तो भगवान कृपा करके आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए गोपियों ने निर्णय कर लिया और सच्चाई यही है जीवन की, पूर्ण साधना करने के बाद ही ये अनुभव होता है कि अब ठाकुर की प्राप्ति साधना से नहीं होगी, कृपा से होगी। जब तक साधना नहीं करेगा वो सुन सकता है। आज बात हो रही थी अशोक पाल जी से, बोले महाराज हमको तो कृपा की ही अनुभूति होती, हमको तो लगता ही नहीं कि कुछ करना है। मैंने कहा यही तो साधना का फल है, इस जन्म में नहीं हो सकता, आपके पिछले जन्म की साधना का फल हो, कृपा की अनुभूति हो जाना ही साधना का फल है। उसके बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति का प्रेम और विश्वास ठाकुर जी पे बढ़ने लग जाता है। तो बिना साधना की कृपा की अनुभूति नहीं होती। तो गोपियां जमुना पुलिन पे आ जाती, लेकिन खोजने से नहीं मिले, लेकिन करें क्या, जमुना पुलिन पर आने के बाद भी श्री कृष्ण के वियोग में रहा भी तो नहीं जाता, श्री कृष्ण मिले नहीं, लौट के वापस आ गई, अब क्या करें। तो उनके हृदय की जो पुकार है श्री कृष्ण के प्रति, अंतिम पुकार इसको कहा गया, गोपियों के जीवन की अंतिम पुकार है जो उनके हृदय से निकलती है, जिसका नाम है गोपी गीत। ये गोपी गीत कनक मंजरी छंद में, और कनक मंजरी छंद इसका नाम इसलिए रखा है महापुरुषों ने, कनक का अर्थ सोना होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, और दोनों का सेवन करने से व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोना जिसके पास हो जाए वो भी मदमस्त हो जाता है, और धतूरा खा ले तब तो कहने क्या है, वो तो मदमस्त हो ही जाएगा। तो इसीलिए कनक मंजरी छंदेश का नाम क्यों रखा? जीव गोस्वामी जी ने लिखा कि क्या गोपियों ने कनक मंजरी छंद में गोपी गीत गाया? क्या गोपियों का रागों का ज्ञान था गोपियों को? नहीं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों के तो हृदय की पुकार निकल रही थी, वो स्वाभाविक पुकार जिस लय में निकली बाद में गीतकारों ने निश्चय किया कि कौन सा छंद है और कौन सी लय। गोपियां, कोई कृष्ण वियोग में रो रहा है तो क्या वो स्वर और ताल का ध्यान करके रोएगा क्या? क्या वो छंद का ध्यान करके रोएगा क्या? ये गोपियों के जीवन की पुकार। गोपी गीत इतना सुंदर है, इतना मार्मिक है, बिना अर्थ समझे भी अगर इसका पाठ किया जाए ना, कई लोगों का अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, थोड़ा भी अगर कृष्ण प्रेम है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। इतनी सुंदर है, क्योंकि गोपियों का हृदय। दो चार श्लोक मैं सुनाऊंगा कैसे इसका पाठ होता है और फिर इसकी व्याख्या करेंगे।
जयति ते धिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शशदत्रहि दयित दृष्टा दीक्षुतावका
शेष गोपी गीत का पाठ होता है। 19 श्लोक इस गोपी गीत में है और 3 श्लोक भगवान के प्राकट्य के हैं, 22 श्लोक पूरे गोपी गीत में है। गोपियों ने जो हृदय की पुकार की, शायद वातावरण सारा द्रवित हो गया था वहाँ। और गोपियों के जो भाव थे, हृदय के भाव, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। हे दैत, संबोधन क्या है? दैत, दैत का अर्थ होता है प्राण सर्वस्व। गोपियां कहते हैं हमारे प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर, इस ब्रज में जन्म लेने के कारण सारे ब्रज की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आपका प्राकट्य हुआ है ब्रज में, और ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई। वैकुंठ से ज्यादा बढ़ गई, बोले क्यों? बोले श्रयत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी, इस ब्रज में आपके अवतार के बाद लक्ष्मी जी सेवा करने आ गई, ब्रज की सेवा करती, तो ब्रज की महिमा क्या बढ़ी? बोले जिस लक्ष्मी जी की सेवा वैकुंठ में होती है, वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा होती है, वही लक्ष्मी जी ब्रज में आकर के स्वयं सेवा करती है। तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ, वैकुंठ या ब्रज? ब्रज। लक्ष्मी जी वैकुंठ की मालकिन है, स्वामिनी है, वो आकर के यहाँ सेवा करती है। क्या सेवा करती है? हमारे गुरु जी कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बोले लक्ष्मी जी एक एक पुष्पों को संवारती थी, कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, एक एक पत्ती। क्यों क्यों संवारती थी अपने हाथ से? क्योंकि लक्ष्मी जी का सीधे प्रवेश ब्रज में श्री कृष्ण के पास नहीं था, और पुष्प रोज जाते थे श्री कृष्ण की सेवा में, तो लक्ष्मी जी अपने हाथों से फूलों को संवारती थी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ की सुगंध पुष्प में लग जाए, और पुष्प जब श्री कृष्ण के पास जाए तो उनकी सुगंध श्री कृष्ण को पता लग जाए कि लक्ष्मी भी ब्रज में सेवा कर रही है, तो हमारी भी स्मृति श्री कृष्ण को आ जाए, इसलिए लक्ष्मी जी ब्रज में सेवा करती है। और ये भावना नहीं है, आज भी आप ब्रज में देखें, आप लोग यहाँ कई ऐसे होंगे जो काशी गए होंगे और ब्रज भी गए होंगे, वृंदावन भी गए होंगे। काशी में सरस्वती तो है, लेकिन लक्ष्मी थोड़ा दूर है वहां से। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े वैयाकरण, नैयायिक, साहित्याचार्य, व्याकरण आचार्य, वेदांताचार्य, उनकी समस्या है जीवन में रहने की, भोजन की। और वृंदावन में भागवत का पहला श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, और बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, लक्ष्मीपति उनके पीछे घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकान है, तो वो पंडित की महिमा नहीं है, ये ब्रज की महिमा है, क्योंकि लक्ष्मी वहां सेवा करती है, ठाकुर जी वहां रहे हैं ना। आज ब्रज में देखें हमारे पंडित, वो चौड़ी किनारी की धोती, वो दुपट्टा और वो सुंदर गाड़ी, ये ब्रज में ठाकुर आया है ना। जहाँ लक्ष्मी स्वयं सेवा करे वहां कौन क्या कर सकता है। तो महाराज अभी वृंदावन में एक प्रेम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अभी एक महीना पहले हुआ है, आप लोग जाएं तो जरूर देखें, कृपालु जी का है, देखने लायक। इतना सुंदर विग्रह श्री राधा कृष्ण के और श्री सीताराम जी के, शायद एक दो जगह कहीं हो तो हो, नहीं तो शायद नहीं, और एक वृंदावन की निधि जैसे हो गई है। तो ये क्या है, ये विदेशों से संपत्ति इतनी आई है, और इतना मैं समझता हूँ, मैं तो अनुमान नहीं लगा सकता कितना खर्च हुआ, लेकिन दर्शनीय स्थल बना है, तेजो वृंदावन है, ये व्रज है। और गोपियां कहती हैं यहाँ लक्ष्मी जी स्वामिनी नहीं है, यहाँ लक्ष्मी जी सेविका है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ठाकुर हैं, यहाँ के आप मालिक हैं। तो बोले लक्ष्मी जी सेविका क्यों है? बोले भगवान जब भक्तों के साथ रहते हैं तब लक्ष्मी जी दूसरी पंक्ति में रहती हैं, पहली पंक्ति में नहीं रहती, प्रेमियों की पंक्ति पहली है। लक्ष्मी जी राधा रानी के अवतार नहीं है, ध्यान रखना, राधा रानी और श्री कृष्ण शक्ति और शक्तिमान है, लक्ष्मी जी अलग हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्माणी हैं, पार्वती हैं, ये सब किशोरी जी की एक एक अंश से प्रकट होती, किशोरी जी सबकी अधिष्ठात्री शक्ति। तो किशोरी जी जहाँ विद्यमान है साक्षात ठाकुर जी के साथ, इसलिए लक्ष्मी जी का वर्णन गोलोक में नहीं है, लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती, गोलोक में तो किशोरी जी रहती, राधा रानी रहती है, तो वो लक्ष्मी जी यहाँ सेवा करती है। गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर आज ब्रज तो बैकुंठ से भी आगे निकल गया है, ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी ज़्यादा है। एक बात और दूसरी बात, ब्रज में ठाकुर जो लीला करता है वो लीला ठाकुर बैकुंठ में नहीं कर सकता, वो आनंद नहीं आ सकता है। ब्रज का ठाकुर तो ग्वाल बालों के पत्तल से जूठा उठा के खा लेता है, ब्रज के ठाकुर की पीठ पे तो ग्वाल बाल बैठ जाते, ब्रज के ठाकुर को तो गोपियां डंडा लेके दौड़ा देती। ये क्या बैकुंठ में हो सकता है क्या? यशोदा मैया जब छड़ी लेके कन्हैया को धमकाती हैं, वो छवि आपने देखी होगी, चित्रकारों ने बनाई है, एक हाथ से श्री कृष्ण का हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से छड़ी लेके धमका रही है, तूने मिट्टी क्यों खाई? और जानते हो वो जगन नियंता परमात्मा आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे, डर रहे। और यशोदा मैया का जो वहां संबोधन है, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा अदांतात्मा, यशोदा जी श्री कृष्ण को जो संबोधन का शब्द बोलती हैं, अदांतात्मा, अदांतात्मा का हिंदी में अर्थ होता है चटोरा, जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं। यशोदा जी कहती हैं, अरे चटोरा, माखन खाए तो खाए तो मिट्टी खा लिया, तेरा तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नारद जी मुस्कराते हैं इस लीला को देख के। नारद जी कहते हैं, धन्य हो प्रभु, आपको चटोरा ब्रह्मा जी नहीं बोल सकते, शंकर जी नहीं बोल सकते, इंद्र नहीं बोल सकते, धन्य है आपके प्रेम की परवशता, आज यशोदा मैया आपको धमका भी रही हैं और चटोरा भी कह रही है। ये लीला बैकुंठ में नहीं हो सकती, ये लीला ब्रज में हो सकती, ब्रज में हुई है, आज भी होती है। तो इसलिए गोपियां कहती हैं, आपके जन्म लेने से जयति ते धिकम जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म लेने से ब्रज की तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है, विजय हो रही है। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है? गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आपके अवतार से सारा ब्रज आज आनंदित है, गौरवान्वित है, केवल हम गोपियों को छोड़ करके। अगर सारे ब्रज के लिए आपका अवतार हुआ है तो हमको इतना कष्ट क्यों श्री कृष्ण? हमको तो शंका हो रही है कि आपने हमको ब्रज के अंदर स्वीकृति दी है या नहीं दी है, क्योंकि ब्रज के सारे लोग आनंदित हैं, हम ही एक वियोग व्यथा में व्यथित हैं, आपको दसों दिशाओं में खोज रही है। और हम कौन हैं? हम आपकी हैं श्री कृष्ण, तावका, एक एक शब्द जो गोपियों का है हम आपकी हैं, हम दूसरी नहीं है, आपकी गोपियां आपको खोज रही हैं श्याम सुंदर, ये भाव जहां आ जाए। जैसे भागवत में महाराज प्रथु का एक प्रसंग आता है, महाराज प्रथु भगवान से वरदान मांगते हैं, तो एक वरदान की मैं चर्चा करूंगा। महाराज प्रथु भगवान कहते थे वरदान मांग लो, प्रथु जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, पृथ्वी का मैं राजा स्वयं हूं और स्वर्ग के राजा की दुर्दशा में देख चुका हूँ, इंद्र की, स्वर्ग नहीं चाहिए, भूलोक नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए थे। भगवान बहुत कहे कि कुछ मांग लो, तो बैकुंठ के लिए वरदान मांगा। भगवान ने कहा क्या बैकुंठ चाहिए? बोले नहीं, बैकुंठ आना तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, क्या अपनत्व है? भगवान बोले कैसे? अरे बोले, पुत्र अपने पिता के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जीवन छोड़ के बैकुंठ में आऊंगा उसके लिए वरदान की जरूरत नहीं, पुत्र कहाँ जाएगा पिता के घर को, कितना प्रेम। क्या ये विश्वास हमारे आपके जीवन में है कि ये जीवन छोड़ के हम ठाकुर के घर ही जाएंगे? ये प्रथु का विश्वास। भगवान मुस्कराए, बोले तो फिर वरदान क्या चाहते हो? बोले बैकुंठ तो मैं आऊंगा, इसके लिए वरदान की जरूरत नहीं, वो तो मेरा हक है, मेरे पिता का घर है। बोले फिर? बोले जब मैं बैकुंठ आऊंगा तो वहां के लिए एक वरदान चाहिए। भगवान भी थोड़ा सोचने लगे, वहां के लिए क्या वरदान चाहिए? बोले आपकी चरण सेवा, चरण सेवा, इतने प्रेमी भक्त हो, मैं आपको मना भी क्यों करूंगा चरण सेवा के लिए, वरदान मांगने की क्या जरूरत? प्रथु जी बोले आप मना तो नहीं करेंगे, लेकिन बैकुंठ में आपकी एक चरण सेविका रहती है, और वो हमेशा आपके चरण सेवा करते हैं, कौन है? लक्ष्मी जी। और मैं भी चरण सेवा करूंगा, दो हो जाएंगे, और दो हो जाएंगे तो कभी न कभी सेवा को लेके झगड़ा हो सकता है। भगवान मुस्कराए तो कहना क्या चाहते हो? पृथु जी ने कहा अभी से वरदान दे दीजिए कि जब मैं बैकुंठ आऊंगा आपकी चरण सेवा करूंगा, और लक्ष्मी जी से कभी चरण सेवा को लेके झगड़ा हुआ तो आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, मेरा पक्ष ले लेंगे, ये वरदान अभी दे दीजिए। आप कल्पना कर सकते, ये है प्रेम, ये है भाव, हृदय का प्रेम। तो गोपियां कहती हैं कोई दूसरी गोपियां नहीं है जो आपको खोज रही है, ये आपकी गोपियां हैं श्याम सुंदर, और आपके गोपियां आपने बनाया है, आपने हमको स्वीकार किया है, आपने हमको वरदान दिया है, आपने बांसुरी बजा के बुलाया है श्याम सुंदर, इसलिए आप कृपा करके हमको दर्शन दे दो, प्रकट हो जाओ। फिर गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आप अगर प्रकट नहीं होंगे तो हम आपको बता चुकी ये शरीर हमारा छूट जाएगा, अब ये शरीर दुनिया के काम कर रहा नहीं। हाँ, जब एक पराकाष्ठा का प्रेम होता है ना, फिर व्यक्ति व्यवहार के लायक नहीं रहता। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, अब तो होनी होए सो होए। हाँ, पराकाष्ठा का जब प्रेम आ जाता है तब व्यक्ति से व्यवहार होता नहीं, चाहता है वो छोड़ता नहीं है लेकिन छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब महाराज कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेके वापस लौटे गया से, वर्णन बहुत अच्छे अध्यापक थे, इतना सुंदर पढ़ाते थे कि सारे विद्यालयों के छात्र उनके विद्यालय में आ गए थे। वापस आने के बाद फिर पढ़ाना प्रारंभ किया, लेकिन व्याकरण के सूत्रों की जगह पर उनके श्रीमुख से कृष्ण नाम निकलने लग जाता था, आयोन रिलिक ये सब नहीं निकलता था, व्याकरण के 14 सूत्र नहीं निकलते थे। विवश होकर के पुस्तकों को ऊपर रख दिया और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए वियोग में भगवान को पाने के लिए। महाराज उनका जो सारा जीवन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ने लायक। हाँ, तो महाराज गोपियां कहती है ये जो जीवन है ये आपने पकड़ा है, हमको आपने अपनाया है, आज ये जीवन अब कुछ ही काम कर रहा नहीं, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका एक ही परिणाम होगा, ये जीवन चला जाएगा, इस शरीर में और कुछ करने की अब सामर्थ्य रही नहीं। लेकिन गोपियां निवेदन करती हैं अगर हमारा जीवन जाना ही था, आपके साथ लीला का रस नहीं मिलना था तो अच्छा होता अगर आप जब इंद्र ने कोप किया था उस समय आप हमारी रक्षा नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम पहले ही चली जाती, ये जीवन पहले ही चला जाता। किसी ने पूछा क्यों, क्या गोपियां नाराज हो गईं श्री कृष्ण से? नहीं, आप गोपियों का भाव देखें, गोपियों की एक एक बात का लक्ष्य क्या है, आधार क्या है। गोपियां कहती हैं नहीं हम नाराज अभी भी नहीं, आक्रोश हमारा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण इंद्र के कोप के समय हमारा जीवन जाता तो कृष्ण प्रेम कलंकित नहीं होता, आज जीवन जाएगा तो कल से तुम्हारे प्रेम के रास्ते पर कोई चलेगा नहीं कन्हैया, इसलिए आज हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे वियोग में जीवन जाएगा तो कृष्ण भक्ति में कलंक लग जाएगा। श्याम सुंदर आप कल्पना कर सकते हैं इतने वियोग की दशा में भी गोपियों की मनोवृत्ति कहाँ है, कि कृष्ण के ऊपर कोई आक्षेप ना आवे, हमारा जीवन जाए या रहे इसकी चिंता गोपियों को नहीं है। आज भी गोपियों को अगर चिंता है तो कृष्ण प्रेम में कलंक न लगे, ये चिंता है। अगर हमको आपका सानिध्य नहीं प्राप्त होना था कन्हैया तो उसी समय हम चली जाती तो ज्यादा अच्छा होता। लोग यही कहते इंद्र ने कोप किया, वर्षा हुई और ब्रज के लोग मर गए, तुम्हारे नाम पे कलंक तो नहीं आता, कृष्ण प्रेम पे कलंक तो नहीं आता। इतना दिव्य जिनका चिंतन, इतना दिव्य जिनकी सोच, उन गोपियों के विषय में बिना कृष्ण प्रेम के, बिना श्री राधा रानी के प्रेम के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कितना बड़ा बुद्धिजीवी हो, कितना एजुकेटेड हो, वो एक अलग फील्ड है उसका, एक रास्ता अलग है। मैं फिर कहूँगा जहाँ उद्धव जैसा विद्वान, उद्धव जैसा विद्वान आज कोई नहीं, जिसने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की थी। उद्धव ने स्वर्ग के जो गुरु हैं बृहस्पति जी से शिक्षा ग्रहण की थी, वो उद्धव जिन गोपियों के चरणों में साष्टांग लेट के उनकी धूली उठा के अपने मस्तक पे लगाते हैं, आज का बुद्धिजीवी क्या विचार करेगा उन गोपियों के विषय। सुखदेव जैसे अवधूत, ब्रह्मा जैसा सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित, जिन गोपियों के चरणों की धूली की आकांक्षा करते वो गोपियां, उनकी एक एक बात आप देखें। श्री कृष्ण से कहते कन्हैया, अगर तुमको नहीं मिलना था, ये रासलीला का रस नहीं देना था, यह हमको नहीं अपनाना था, तो आप हमको पहले ही चले जाने देते। लेकिन भगवान कृष्ण क्यों छिपे? यही निकालने के लिए, यही दिखाने के लिए कि गोपियां क्या है, उनका जीवन क्या है। गोपियां कहती हैं, न खल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, विखन सारथी तो विश्व गुप्त ये सख उदयीवान सात्वताम कुले। ये गोपी गीत है, ये गोपियों के जीवन की अंतिम पुकार है, ये उनके हृदय का प्रेम, पूर्ण प्रेम प्रकट हुआ है। इस श्लोक के दो अर्थ किए गए। सीधा अर्थ तो ये है, गोपियां कहती हैं भवान खलु गोपिका नंदना न, हे श्री कृष्ण, केवल आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, आपका अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सारे संसार के कल्याण के लिए हुआ है, सारे संसार के भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है, हम भी उन्हीं भक्तों में हैं, तो आपको हमारा भी उद्धार करना चाहिए, निवेदन करती। लेकिन गोपियों का भाव तो यही है सीधा, लेकिन गोपियों की आज जो दशा है कृष्ण वियोग में, आप जानते हैं, इस स्थिति में सुखदेव जी महाराज, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती श्री कृष्ण का पक्ष छोड़ के गोपियों के पक्ष में बोल रहे हैं। आज कोई भी भक्त इस घटना में श्री कृष्ण के पक्ष में नहीं है, सब गोपियों के पक्ष से बोल रहे हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती गौड़ी संप्रदाय के, संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं दोनों महापुरुषों ने, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती, भागवत पे पूरी टीका है संस्कृत में। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, नहीं, गोपियों का इतना सीधा सरल भाव नहीं है कि आप यशोदा मैया के पुत्र हैं लेकिन सबके कल्याण के नहीं। उसका अर्थ बदल दिया, संस्कृत भाषा ऐसी है, उसके कई अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते, गोपियां कहती हैं भवान खलु न गोपिका नंदना, आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, ये निश्चित हो गया। खलु माने खलु निश्चय, ये निश्चित हो गया आपकी इस घटना से कि आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं है। मानो भाव राज्य में श्री कृष्ण प्रकट है, उनके हृदय देश में श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, गोपियों कैसे कह रही हो कि मैं यशोदा जी का पुत्र नहीं हूं? ये व्याख्या गोपियों की नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती की, ध्यान रखना। वो गोपियों के पक्ष से बोल रहे। गोपियां कहती हैं कि माता पिता का कुछ प्रभाव तो बच्चे में होता है ना, यशोदा मैया का हृदय इतना कोमल और तुम्हारा हृदय इतना कठोर, यही इस बात का प्रमाण है कि आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, मान लेता हूं, मैं केवल यशोदा जी का पुत्र नहीं हूं, मैं तो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से हमेशा रहता हूं, पुत्र बनना तो मेरी एक लीला है। गोपियां कहते हैं, नहीं, ये भी गलत, आप सबके हृदय में हमेशा रहते हैं, ये बात भी गलत है। भगवान बोले, ये कैसे गलत है? गोपियां कहती हैं, सबके हृदय में रहते होते तो हमारे हृदय में भी होते, सब में हम भी हैं, और हमारे हृदय में होते श्याम सुंदर, तो हमारे हृदय में इस समय क्या तुम्हारे वियोग में व्यथा है, ये तुमको मालूम होती, और तुमको मालूम होती तो तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते थे, अगर तुम हमारे हृदय में होते। रोने लग जाती हैं गोपियां। इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कन्हैया कि तुम सबके हृदय में रहने वाले नहीं हो, सबके हृदय में होते तो हमारे हृदय में होते, और हमारे हृदय में होते तो तुम छिप नहीं सकते थे, प्रकट हो जाते। भगवान को आश्चर्य होता है गोपियों की इस व्याख्या पर, ये नवीन व्याख्या, भले वो विश्वनाथ चक्रवर्ती की है लेकिन वो गोपियों के पक्ष से बोल रहे। श्री कृष्ण ने एक तर्क और दिया, नहीं, मैं सबके हृदय में हूं, तुमको मालूम है जब बड़ी भारी आपत्ति पड़ी थी तब ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना से मैं अवतार लेके आया हूँ। विखनसा अर्थिता ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा अर्थिता प्रार्थिता, उनकी प्रार्थना से मैं अवतार लेके आया हूँ। तुमको ये मालूम है सारे संसार की रक्षा के लिए? गोपियाँ कहती हैं हाँ इतना तो मालूम है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने अवतार लिया है, लेकिन संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है ये हम नहीं मानती। क्या तर्क है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का? वो कहते हैं संसार की रक्षा के लिए आपने अवतार नहीं लिया। बोले फिर तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना इसीलिए की थी? बोले नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है और ब्रज में इतने संत हो गए, केशव भगवान के भजन का उपदेश देने लग गए, सारे लोग घर परिवार छोड़ के भजन करने लग गए, ब्रह्मा जी डर गए। क्या डर गए? इतने संत लोग इतना प्रवचन करेंगे तो कोई गृहस्थ आश्रम में जाएगा नहीं, सृष्टि खत्म हो जाएगी, मेरी सृष्टि रचना का क्या होगा। बोले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ठाकुर जी अवतार लो और इनका भजन पूजन थोड़ा छुड़ाओ। बोले फिर, बोले कन्हैया और प्रमाण देती हैं गोपियाँ, श्री कृष्ण तुम्हारे आने के पहले सब लोग ब्रज में खूब जप करते थे, खूब ध्यान करते थे, खूब पाठ करते थे, जब से तुमने अवतार लिया है लोगों का जप छूट गया, ध्यान छूट गया, पाठ छूट गया, तुम्हारे पीछे पीछे सारा ब्रज घूम रहा है। तो ब्रह्मा तो अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए तुमसे अवतार लेने की प्रार्थना किया, भक्तों की रक्षा के लिए नहीं किया। ऐसे तर्क दिया, भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित होते हैं। भाव राज्य में प्रकट तो अभी हुए नहीं, गोपियाँ इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी आप कृपा करो, ये जीवन आपका है, ये गोपियाँ आपकी हैं, आप इनको स्वीकार करो, हमेशा हमेशा के लिए आपका जीवन हो चुका है, ऐसे प्रार्थना करती है। गोपी गीत बड़ा है, आगे की चर्चा कल करेंगे, आज समय फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, स्वामी जी की अनुमति थी कल, आज इतना ही, आगे कल। बोलिए राश बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। थोड़ा संकीर्तन करेंगे और फिर जाएंगे।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा,
जीवन
हमारो धन राधा 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 राधा,
हमारो धन राधा 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 राधा,
जीवन धन राधा 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 राधा,
जीवन धन राधा 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 राधा,
परम धन राधा श्री राधा श्री राधा,
परम धन राधा
राधा राधा राधा राधा राधा,
हमारो धन राधा 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 राधा,
हमारो धन राधा 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 राधा,
हमारो धन राधा 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 राधा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे।